कृति ने पलटकर सानवी को देखा। उसके चेहरे पर घबराहट नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी गंभीरता थी जो सानवी को और बेचैन कर गई। आर्यन भी वहीं आकर खड़ा हो गया। उसने एक नज़र वेटर पर डाली, जो अब चुपचाप सिर झुकाए खड़ा था। हवा में तनाव साफ महसूस हो रहा था। कृति ने एक गहरी सांस ली, मानो तय कर रही हो कि क्या कहना है और क्या नहीं। फिर उसने सानवी की आंखों में देखते हुए कहा, दीदी, ये मामला जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। और ये सुनते ही सानवी का गुस्सा अचानक बेचैनी में बदल गया, क्योंकि कृति जब इस तरह बोलती थी। कृति ने बिना एक पल गवाए अपने हाथ में पड़ा बबलू का फोन आर्यन की तरफ बढ़ा दिया। ये आदमी जैसिका के लिए काम करता है, कृति ने साफ और ठोस आवाज में कहा। बबलू घबरा गया, उसकी आंखें फैल गईं। आप क्या कह रही हैं, वो झट से बोला। मैं किसी को नहीं जानता, कहते हुए वो आगे बढ़ा और अपना फोन वापस लेने की कोशिश करने लगा। लेकिन तब तक आर्यन ने फोन अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया था। सानवी सब कुछ चुपचाप देख रही थी, लेकिन उसकी धड़कनें तेज हो चुकी थीं। ऐसा ही फोन मुझे भी मिला था, कृति ने आगे कहा, जब मैं उसके लिए काम करती थी, जैसिका के लिए। बबलू का चेहरा उतर गया। और अभी अभी, कृति ने बबलू की ओर इशारा करते हुए कहा, इस आदमी ने किसी से बात की है, मैंने खुद इसकी बातें सुनी हैं। आर्यन ने बिना कुछ कहे फोन की स्क्रीन पर नजर डाली। उसने कॉल लिस्ट खोली, सबसे ऊपर मैडम। आर्यन ने एक सेकंड भी नहीं रुका, उसने वही नंबर डायल कर दिया और स्पीकर ऑन कर दिया। एक ही रिंग में कॉल उठ गई। क्या बात है बबलू, स्पीकर से एक औरत की तेज और चिड़चिड़ी आवाज गूंजी। अभी तो बात हुई थी तुमसे, मैं बहुत बिजी हूं, उस आवाज में हुक्म भी था और बेपरवाही भी। आर्यन की आंखें सख्त हो गईं। अपने आदमी को आकर ले जाओ, उसने ठंडे लेकिन खतरनाक लहजे में कहा। फोन की दूसरी तरफ एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, लेकिन उसी पल बबलू ने मौका देखकर झट से पीछे कदम खींचे। बबलू, सानवी ने चिल्लाना चाहा, मगर वो सुनने के मूड में नहीं था। वो पलटा और पूरी ताकत से रेस्टोरेंट के बाहर की तरफ भागने लगा। सब कुछ कुछ सेकंड में हुआ। फोन अब भी आर्यन के हाथ में था, स्पीकर पर खामोशी फैल चुकी थी और सामने एक बड़ा सच भागता हुआ नजर आ रहा था। और ये साफ था कि ये खेल अब बहुत आगे निकल चुका था। पकड़ो इसे, कृति घबराकर चिल्लाई, लेकिन आर्यन ने तुरंत हाथ उठाकर उसे रोक दिया। नहीं, उसने सख्ती से कहा, कोई फायदा नहीं है। सबकी नजरें हैरानी से उसकी ओर उठ गईं। इसे खुद ज्यादा कुछ पता नहीं है, आर्यन ने शांत लेकिन यकीनी आवाज में कहा। इसे सिर्फ खबर देने के लिए रखा गया था, ऐसे लोग सिर्फ मोहरे होते हैं, असली खेल कहीं और चल रहा होता है। सानवी का दिल बैठ सा गया। और हो सकता है, आर्यन ने आगे कहा, भागते भागते कोई नुकसान भी करने की कोशिश करता, बेवजह रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। तब तक बबलू रेस्टोरेंट की नजरों से उझल मिल चुका था। तीनों अंदर की ओर बढ़ गए। रेस्टोरेंट में कदम रखते ही माहौल बदला बदला सा लगा। री और कैमल भी वहां पहुंच चुके थे। अब सबको ये पता चल चुका था कि बबलू किसका आदमी था और वो यहां किस मकसद से रखा गया था। फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। स्टाफ के चेहरों पर डर और असमंजस साफ दिख रहा था। आर्यन ने सबको एक जगह इकट्ठा होने का इशारा किया। देखिए, उसने गंभीर लहजे में कहा, मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं, अब से रेस्टोरेंट में जितने भी मुलाजिम रखे जाएंगे उनका इंटरव्यू मैं खुद लूंगा। सानवी कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन आर्यन ने बिना रुके बात जारी रखी। आप लोगों को अब ये सब करने की जरूरत नहीं है, उसकी आवाज में आदेश था, बहस की कोई गुंजाइश नहीं। और हाँ, उसने एक पल रुककर जोड़ा, मैं रेस्टोरेंट की सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम भी करवाऊंगा। सानवी ने हल्का सा विरोध करने की कोशिश की, आर्यन शायद इतना ज्यादा, लेकिन आर्यन ने उसकी बात को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। उसकी आंखों में एक ही साफ इरादा था, अब किसी को भी सानवी या इस रेस्टोरेंट के आसपास खेलने की इजाजत नहीं मिलेगी। और सब समझ गए थे, ये सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि जब कोई खेल खुलकर सामने आने लगता है तो अगली चाल और भी खतरनाक होती है। मगर आर्यन उसे वहीं छोड़कर रेस्टोरेंट से निकल गया। उसके जाते ही सानवी का गुस्सा फूट पड़ा। बस बहुत हो गया, सानवी ने दांत भींचते हुए कहा। कृति और आर्यन, इन दोनों ने मेरी जिंदगी को एक अजीब से भंवर में फंसा दिया है, उसकी आंखों में जलन और बेबसी दोनों थे। अब ये आदमी, उसने तंज भरे लहजे में कहा, इस बात को भी कंट्रोल करेगा कि मैं अपनी मर्जी से वेटर भी नहीं रख सकती। सानवी का गुस्सा अब काबू से बाहर हो चुका था। आर्यन के साथ जुड़ने के बाद से ही उसकी जिंदगी मानो एक तह दायरे में सिमटती जा रही थी। हर तरफ सिक्योरिटी, हर कदम पर निगरानी, हर फैसले में दखल, यही सोच उसे और परेशान कर रही थी। आर्यन जा चुका था, लेकिन कृति अब भी वहीं खड़ी थी। सानवी ने मुड़कर उसे देखा, उसकी आंखों में आग थी। तुमने अपनी जिंदगी में एक भी काम ढंग का नहीं किया, सानवी ने गुस्से से कहा। देख लिया ना, तुमने आर्यन को सब बता दिया। दीदी, कृति ने कुछ कहने की कोशिश की। चुप, सानवी ने उसे बीच में ही रोक दिया। मैंने कहा था ना, तुम बीच में मत कूदा करो। कृति की आंखें भर आईं। मैंने नहीं बताया, उसने कांपती आवाज में कहा, आप लोग खुद वहां आ गए थे। सानवी का गुस्सा और भड़क उठा। तो तुम्हें बीच में कूदने को किसने कहा था, वो तमतमाकर बोली। जब तुमने उसकी बातें सुन ली थी तो सीधा मुझसे बात करती, मैं खुद उसे काम से निकाल देती, सानवी ने हाथ झटकते हुए कहा। अब देख लिया ना, आर्यन अब हर काम में अपनी टांग अड़ाएगा, उसने गहरी सांस ली जैसे खुद को संभाल रही हो। मानती हूँ वो रेस्टोरेंट का पार्टनर है,
लेकिन मुझे किसी का भी ज्यादा दखल पसंद नहीं है। सानवी की आवाज ऊंची होती जा रही थी। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अब कृति भी रोते रोते गुस्से में आ गई। मैंने आपसे माफी भी मांगी थी, उसने हिम्मत करके आगे कहा, और मैंने बदला भी लिया। किस बात का बदला? सानवी चौंकते हुए बोली। क्या बदला लिया तुमने? कृति ने कांपती हुई सांस ली। जब आर्यन जीजू को पता चला कि आपने वो सब छुपाया है, वो बोली, तो वो आप पर गुस्सा हो गए थे। सानवी की आंखें सख्त हो गईं। जेसिका ने उन्हें ये सब बताया था, कृति ने आगे कहा, तो मैंने विक्रांत को बता दिया कि जेसिका ने अबॉर्शन करवाया है विक्रांत से छुपकर। सानवी सन रह गई। विक्रांत, वो पूरा नाम भी नहीं ले पाई। हाँ, कृति ने कहा, दोनों के बीच जबरदस्त झगड़ा हुआ, इतना कि उन्होंने मुझे धमकाने की कोशिश भी की। एक पल का सन्नाटा छा गया, लेकिन अब सब ठीक हो गया है, कृति ने जल्दी से जोड़ा। सानवी ने उसे अविश्वास से देखा। तुम ऐसे काम करती ही क्यों हो? उसने थके और टूटे हुए लहजे में कहा। अब उसका गुस्सा दर्द में बदलने लगा था। तुम समझती क्यों नहीं? सानवी बोली, हर बार तुम्हारी एक हरकत मेरी जिंदगी और मुश्किल बना देती है। कृति कुछ नहीं बोल पाई। कृति की आंखें लाल हो चुकी थी, वो अब और कुछ सुनने के मूड में नहीं थी। रिया भी अब खुद को रोक नहीं पाई। ये ड्रामा बंद करो, रिया ने तेज आवाज में कहा। ये रेस्टोरेंट है, कोई जासूसी एजेंसी नहीं। तुम्हारी वजह से यहाँ रोज कोई ना कोई तमाशा खड़ा हो जाता है। कृति का चेहरा सख्त हो गया। तो आपकी नजर में मैं ही हर बार गलत हूँ? उसकी आवाज कांप रही थी, मगर गुस्सा साफ था। सानवी ने कड़वे लहजे में कहा, हाँ इस बार तुम गलत हो, और ये मैं एक बड़ी बहन के तौर पर कह रही हूँ। कृति ने हाथ झटक दिया। बस बहुत हो गया, वो तेज आवाज में बोली, जब भी कुछ करती हूँ आप दोनों को बस मुझ पर चिल्लाना आता है। रिया ने और सख्ती से कहा, क्योंकि तुम्हें समझ नहीं आती कृति, हर बार तुम्हें सीमा लांघनी होती है। कृति की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन वो रोई नहीं। ठीक है, उसने ठंडे लहजे में कहा, अब से मैं कुछ नहीं करूंगी, ना मदद ना दखल ना कोई सवाल। सानवी ने उसे रोकना चाहा, कृति, लेकिन कृति सुनने के मूड में नहीं थी। उसने अपना बैग उठाया, गुस्से में दरवाजा खोला और बिना पीछे देखे बाहर निकल गई। दरवाजा जोर से बंद हुआ।
कमरे में एक भारी सन्नाटा छा गया। रिया ने थकी हुई सांस ली। शायद हम ज्यादा सख्त हो गए। सानवी की आंखें दरवाजे पर टिकी रह गईं। नहीं, उसने धीमी आवाज में कहा, अगर मैं उसे डांटती हूं तो इसलिए कि मैं उसे खोना नहीं चाहती।